श्री साई राम साई प्रेम वाणी के हमारे आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम आप सबके लिए लाएंगे गान सरिता प्रोग्राम के अंतर्गत एक सुमधुर गीत एवं हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम भजन शिक्षा।
हम आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक प्रेरक कथा का श्रवण लाभ भी लेंगे।
साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम में मनमोहक भेंट वार्ता के साथ ही साथ हम प्रेमावतार श्री सत्य साई प्रोग्राम में हृदय को छू लेने वाली कथा सुनेंगे। और इस समूचे कार्यक्रम की सर्वोत्तम प्रस्तुति होगी भगवान श्री सत्य साई बाबा की सुमधुर वाणी में दिव्य संदेश।
तो आइए प्रोग्राम का शुभारंभ करते हैं। प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम भजन शिक्षा। कक्षा में प्रस्तुत हैं भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से एक श्री श्रीनिवासुलु सर एवं टीम रेडियो साई के प्रिय सदस्य श्री अनिरुद्ध श्रीनिवासन जी।
गोविंदा गोविंदा मुकुंद माधव गोविंदा।
आज की कक्षा के लिए हमने सन 60 और 70 के दशक में बाबा के सामने गाया जाने वाला ये भजन चुना है, शॉर्ट एंड स्वीट। आइए इस भजन के बोल जान लेते हैं।
गोविंदा गोविंदा मुकुंद माधव गोविंदा, गोपाला साई गोपाला मुकुंद माधव गोपाला, जय जय गोविंद जय जय गोपाला।
है ना शॉर्ट एंड स्वीट। चलिए अब इसे गाना कैसे है ये समझते हैं। इस भजन के लिए जी पंचम श्रुति ली गई है। जी पंचम को सफेद 5 या डी मध्यम या सफेद 2 का मध्यम भी कह सकते हैं।
गोविंदा 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 मुकुंद माधव गोविंदा मुकुंद माधव गोविंदा मुकुंद माधव गोविंदा मुकुंद माधव गोविंदा गोपाला साई गोपाला गोपाला साई गोपाला गोपाला साई गोपाला गोपाला साई गोपाला मुकुंद माधव गोविंदा मुकुंद माधव गोविंदा मुकुंद माधव गोविंदा मुकुंद माधव गोविंदा।
Now the third speed.
जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल
जय जय गोविंद जय जय गोपाल
जय जय गोविंद जय जय गोपाल
जय जय गोविंद जय जय गोपाल
जय जय गोविंद जय जय गोपाल
जय जय गोविंद जय जय गोपाल
जय जय गोविंद जय जय गोपाल
गोविंदा गोविंदा मुकुंद माधव गोविंदा
हमने इस भजन को गाने की विधि तो जान ली, लेकिन जब तक हम ये न जान लें कि इस भजन का भाव पक्ष क्या है, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी ही रहेगी। इस भजन में हम प्रभु के गोविंद स्वरूप का गुणगान करते हैं, जो हमारी पशु वृत्ति से हमें उबारता है। उन्हें मुकुंद भी कहते हैं, जो हमें संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि से पुरस्कृत करते हैं, और वो है मुक्ति। इस भजन में भगवान के गोपाल और माधव स्वरूप का भी वर्णन है। गौओं के लालन पालन करने मात्र से ही उन्हें गोपाल नहीं कहते, बल्कि उन्हें गोपाल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे हर प्राणी मात्र का संरक्षण और संवर्धन करते हैं। गो से तात्पर्य पृथ्वी से है और पाल मतलब पालन करने वाला। गो से तात्पर्य इस संपूर्ण सृष्टि के हर जीव से भी है। माधव का अर्थ है सृष्टि का पालनहार, माया के स्वामी या अधिपति। वास्तव में हमारे आसपास विद्यमान हर एक चीज के स्वामी वे ही तो हैं। इस भाव के साथ आइए एक बार पुनः इस भजन को गाते हैं। जानते हैं कि भगवान बाबा के सामने प्रशांति मंदिर में इस भजन को कैसे गाया जाता है।
जय जय गोविंद जय जय गोपाल
जय जय गोविंद जय जय गोपाल
जय
गोविंद माधव गोविंद।
हमें आशा है कि आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। हम साई प्रेम वाणी की आगामी कड़ियों में ऐसे अन्य कई सुमधुर भजनों के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और सप्रेम साई राम। अब प्रस्तुत है प्रेमावतार श्री सत्य साई। इसके अंतर्गत आज हम सुनेंगे भगवान के बाल्यकाल के कुछ अलौकिक प्रसंग, जहां बाबा के दादाजी ने कैसे भगवान के बचपन में ही ये समझ लिया था कि नन्हे सत्या ब्रह्म ज्ञानी है, कैसे स्वामी को बचपन से ही दरिद्र नारायणों की चिंता रहती थी एवं बाबा का स्कूल जाना प्रारंभ होता है।
बालक सत्यनारायण बढ़ता गया। चंद ही महीनों में सारे ग्राम में अपने पद चिन्हों की सुगंधित आभा फैलाने लगा। घर में अपने नन्हे सुकोमल पद कमलों के सहारे वह दौड़ने लगा। उसकी मीठी मधुर वाणी और बाल सुलभ शब्दों से सभी के दिल डोलने लगे। बालक सत्यनारायण उस कोमल आयु से ही अपने ललाट पर भस्म रेखाएं अंकित करने के लिए लालायित रहता। कपोल पर का भस्म छीन होने पर बालक रो पड़ता था। अपने विशाल भाल प्रदेश पर गोलाकृति कुमकुम अर्थात शिव शक्ति का प्रतीक लगाने के लिए भी वह हट करता। ईश्वराम्मा की युक्तियों से कुछ समय तक चुप रहकर दोनों बड़ी बहनों के किसी काम से बाहर जाते ही वह उनके प्रसादन कक्ष में जाता और कुमकुम स्वयं अपने भाल पर लगा लेता। बालक का यह विचित्र वर्तन अनेक रूपों में प्रकट होने लगा। जिस घर में मांसाहार बनता वहां वह कदम भी नहीं रखता। इसी कारण ग्राम के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों ने उसे ब्रह्मज्ञानी यह उपनाम दिया। संबंधियों के यहां जब मांसाहार बनाया जाता तब बालक सत्य अपनी पड़ोसन ब्राह्मणी कर्णम सुब्बम्मा के घर जाकर भोजन किया करता था। बालक सत्या के संगी साथी उससे मारपीट करते तब वह उनसे कभी प्रतिशोध नहीं लेता था। अपने सहध्यायी बालकों के प्रति उसे प्रेम था। वह कभी किसी मारपीट का उल्लेख अपने घर वालों के सामने नहीं करता था। हो सकता है कि मारपीट की पीड़ा का अनुभव उसका शरीर करता ही न हो। उस पर मार पड़ने का समाचार अन्य बालक ही घर वालों तक पहुंचा देते, पर बालक सत्या मौन ही रहता। सत्या हमेशा सत्य को ही पूजता था और सत्य वचन पर ही अडिग रहता था। बड़ों के भय से अनेक बालक असत्य बोलने पर बाध्य हो जाते हैं। मार से बचने के लिए असत्य बोलने में भी वह नहीं हिचकिचाते। प्रशंसा के मोहवश अनेक बालक अपने कपूल कल्पित पराक्रमों का रसीला वर्णन करने लगते हैं, परंतु प्रशंसा एवं निंदा दोनों से दूर रह सत्या सदा सत्य कथन पर ही दृढ़ रहता था। इसी कारण किसी ने उपहास से उसे ब्राह्मण पुत्र कहना आरंभ किया। अपने पूर्व शरीर में अर्थात शिरडी के साई स्वरूप में भगवान ने जो कहा था उसका स्मरण कीजिए। बाबा ने कहा था, यह ब्राह्मण यहां लाखों लोगों को परिशुद्ध पथ पर से उनके लक्ष्य की ओर ले जा सकता है। याद रखो, ब्राह्मण इस नाम के गुणानुसार सत्या का हृदय अन्य लोगों का दुख देखकर द्रवित हो जाता। सड़क पर दूर से ही भिक्षुक को आते देख सत्या दौड़कर घर के भीतर जाता और मुट्ठी भर चावल या अन्य कोई अनाज लेकर भिक्षुक के द्वार पर आने तक प्रतीक्षा करते हुए खड़ा रहता। बालक की यह प्रवृत्ति देखकर भिक्षुकों की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती चली गई। साथ ही साथ घर वालों का क्रोध भी बढ़ता गया। भिक्षुकों को भगा दिया गया, तब बालक अपने रुदन से आकाश पाताल एक कर देता। उन्हें वापस बुलाकर झोली भरने पर ही बालक सत्या का रोना धोना बंद होता। कई बार ईश्वराम्मा सत्या को धमकाती, इधर उधर भटकने वाले भिक्षुकों को तुम घर पर खींच लाते हो, तुमने फिर कभी ऐसा किया तो तुम्हारे हिस्से का खाना उसे दे दूंगी और तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। पर माता की प्यार भरी धमकी का सत्या पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता था। वह भिक्षुकों की सेवा में और जोर शोर से निमग्न होने लगा। जाओ, तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा, इस प्रकार यदि किसी ने कहा हो तो उस दिन सत्य अपना आहार ग्रहण नहीं करता था, स्वेच्छा से उपवास करता था। उसे मनाने के सब प्रयत्न निष्फल होते थे। कभी कभी तो ऐसे उपवास का व्रत लगातार 5-6 दिनों तक चलता रहता, परंतु बालक के शरीर पर उपवास का विपरीत परिणाम नहीं होता था। अन्न पान न करने पर बालक उसी उत्साह से खेलकूद में मग्न रहता। उसके दिन प्रतिदिन के कार्यकलाप में देह श्रम का कोई चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं होता था। थाली में भोजन परोसकर सत्या को बुलाया जाता, तब वह भूख नहीं है कहकर बात को टाल देता। प्रश्न किया जाता, किसने भोजन दिया? तब बालक सत्या जवाब देता, दादाजी ने। उस कथन की सत्यता जांचने के लिए सत्या के हाथ सूंघे जाते, तब उनसे घी, दही, मक्खन आदि की सुगंध आती। सबके मन में यही रहस्य रहता कि आखिर यह भोजन किस प्रकार का है, कौन यह दादाजी है। घर घर में सत्या की प्रशंसा होने लगी। उसका सदैव प्रसन्न रहना, कार्यरत तथा उत्साहित रहना, यह गुण केवल प्रशंसा के पात्र ही नहीं वरन अन्य बालकों के लिए आदर्श रूप अनुकरणीय गिने जाने लगे। अन्य माताएं अपने बालकों के सामने सत्या के गुणों का बखान करती और उनकी तुलना सत्या से करती। बालकों के मन पर इसका प्रभाव पड़ने लगा। किसी बालक ने प्रेम पूर्वक सत्या को गुरु नाम से संबोधित किया, तब से सभी उसे गुरु कहने लगे। राजू परिवार को यह बात मालूम नहीं थी, परंतु रामनवमी के त्योहार पर यह भेद खुल गया। मध्यरात्रि को प्रथा के अनुसार एक जुलूस घर के निकट से निकल रहा था, साथ में नगाड़े, बैंड, भेरी आदि का वाद्य वृंद भी था। एक बैलगाड़ी में प्रभु रामचंद्र जी का चित्र सुशोभित था। पुजारी श्रीफल, कपूर आदि अर्पण कर आरती उतार रहा था। वाद्य वृंद की सुरावलियों से आसपास का जन समुदाय जुलूस की ओर आकर्षित हो रहा था। बहनों ने देखा कि सत्या घर में नहीं है। सत्या को लापता देख लोग परेशान हो गए। चारों ओर ढूंढने पर सत्या का पता लगा। वह भी कैसे? बैलगाड़ी पर सुशोभित रामचंद्र जी के चित्र के पास गंभीर मुद्रा से पद्मासन लगाए सत्या विराजमान था। गाड़ी के चारों ओर से बालकों ने उसे घेर रखा था। ईश्वराम्मा ने पूछा, बच्चों, तुमने सत्या को इस गाड़ी में क्यों बैठाया? तब एक बालक ने उत्तर दिया, वह तो हमारा गुरु है। सत्य है, जगन निवासी सब अवस्था के बालकों का वह गुरु है। हम सभी ईश्वर के बालक हैं। पुट्ट पर्ती में एक छोटी सी पाठशाला थी। सत्या को पाठशाला में दाखिल किया गया, किंतु श्री वेंकप्पा राजू के कथनानुसार लिखाई पढ़ाई की सत्या को कोई आवश्यकता नहीं थी। सत्या का कार्य अनोखा ही था। उदाहरण देते हुए वेंकप्पा राजू कहते हैं, पाठशाला के विद्यार्थी निहित समय पर पहुंचे, इसके लिए वहां के शिक्षकों ने एक प्रथा रखी थी। यह प्रथा संभवतः योग्य ना हो, परंतु पाठशाला पहुंचने वाले बालक अपने आगमन के अनुसार कतार में बैठते थे। प्रथम पहुंचा हुआ बालक प्रथम क्रमांक पर बैठता और बाद में अन्य बालक क्रमानुसार बैठते। पहला बालक आकर गुरुजी को प्रणाम करता, दूसरा बालक उसका अनुसरण करता, परंतु तीसरे बालक को तीन, चौथे को चार, पांचवे को पांच, इस प्रकार क्रमानुसार प्रत्येक बालक को छड़ी का प्रसाद मिलता था। सभी एक साथ आए तो एक ही पंक्ति में बैठ सकते थे, एक के पीछे एक को बैठने की आवश्यकता नहीं थी। इस मार से बचने के लिए सभी बालक जल्दी उठकर पाठशाला के अहाते में एक ही समय पर इकट्ठे होकर आने लगे। शिशिर एवं वर्षा ऋतुओं में बालक ठिठुरते हुए दीवार के सहारे बैठते थे। अनुकंपा से सत्या घर से कंबल, टॉवल, चादर आदि लाकर पाठशाला पहुंचता और बच्चों में बांट देता। हमें इस बात का पता लगाने पर हमने सब कपड़े संदूक में ताला लगाकर बंद रखने आरंभ किए। तब सत्या का दिल पिघलाने वाला असहाय क्रंदन होता था। छड़ी के प्रसाद की इस अनूठी प्रथा का उपहास करते हुए सत्या ने अनेक गीतों की रचना की। बालकों ने अपने सामूहिक कंठ से उन गीतों का गान किया, फलस्वरूप यह कुप्रथा बंद हो गई। सत्यनारायण की प्रतिभा अपार थी, उसकी ग्रहण शक्ति को देख शिक्षक भी हार मानते थे। घर के ज्येष्ठ व्यक्तियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों तथा पदों में त्रुटियां पाकर सत्या ने उन्हें सुधार कर दोष रहित एवं रसीले बनाए। वह भली भांति गा भी लेता। केवल 7-8 वर्ष की आयु में ही सत्या ने अनेकों गीतों की रचना की। इन गीतों को बड़ों ने अपनाया और उनका बखान भी किया। कई गीतों का समावेश नाटकों में भी किया गया, क्योंकि उनकी रचना मनमोहक थी।
अभी आप सुन रहे थे प्रेमावतार श्री सत्य साई। इस कार्यक्रम की आज की कड़ी में हमने भगवान बाबा के बाल्यकाल से जुड़े कुछ प्रसंग सुने, जिसमें बाबा का स्कूल जाना प्रारंभ होना, उनका भिक्षुकों के लिए बाल्यकाल से ही द्रवित हो जाना एवं स्वामी के दादाजी को बाबा के ब्रह्मज्ञानी होने का आभास लग जाना इत्यादि शामिल थे।
अब प्रस्तुत है आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज हम हिमाचल प्रदेश राज्य संगठन के आध्यात्मिक प्रमुख श्रीमान विकास गुप्ता जी के साथ वार्तालाप करेंगे। शिमला निवासी भाई विकास जी के साथ यह वार्ता रेडियो साई के स्टूडियो में हमारी टीम रेडियो साई के सदस्य श्री अभिषेक आचार्य जी के साथ 9 जनवरी सन 2019 को रिकॉर्ड की गई थी।
ओम श्री साई राम। विकास भैया, साई प्रेम वाणी के अंतर्गत प्रसारित होने वाले कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार में आपका स्वागत है।
धन्यवाद अभिषेक भैया। जय साई राम।
तो हमें बताइए कि किस प्रकार भगवान बाबा ने आपके जीवन में प्रवेश किया, आपने पहले बाबा को कैसे जाना और कैसे भगवान की चमत्कारी प्रेम ने आपके जीवन को छुआ और फिर आपके जीवन को बदल दिया।
भैया, जैसे आपको मालूम है, हिमाचल के लिए भगवान के दिल में एक अलग ही स्थान रहा है। हिमाचल भगवान 3 बार आए, 1973, 1975 और 2010 में। भगवान की विजिट के साथ ही भगवान के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई। 1975 में जब भगवान बाबा शिमला आए, उसमें मेरी उम्र 6 महीने थी। मेरी माता की प्रबल इच्छा थी कि हम भगवान के दर्शन जरूर करें। एक 6 महीने के छोटे से बच्चे को लेकर वो भगवान के दर्शन के लिए जो शिमला का रिज मैदान है, अच्छा, वहां पर मुझे लेकर गई। 4 घंटा इंतजार करने के बाद जब भगवान बाबा दर्शन देने पब्लिक के बीच में आए, तो भगवान सीधे मेरी माता के पास आए और मेरे सिर पर हाथ रखकर भगवान ने जो प्रेम रूपी अपना आशीर्वाद है वो मुझे पहली बार 1975 में दिया। यहीं से भगवान के साथ जो मेरी जर्नी शुरू होती है। जब मैं 18 साल का हुआ 1991 में, तो मुझे श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का मौका मिला। 1991 से लेकर 2019 तक 27 साल डिवाइन ईयर मैं इनको बोल सकता हूं अपनी लाइफ के, जो लाइफ चेंजिंग ईयर्स हैं, मुझे निरंतर जो प्रशांति सेवा में और स्टेट में जो भी सेवा एक्टिविटीज होती रही उनमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। मुझे पूरे 27 साल प्रशांति में जो कुलवंत हॉल मंदिर है, भगवान का दर्शन स्थली है, वहां पर पूरे 27 साल सेवा करने का मौका मिला है। अपनी स्टेट में भी इसी तरह का, चाहे मेडिकल कैंप हो, भजन एक्टिविटी हो, वैदिक एक्टिविटी हो, सब में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। कुछ एक मेरी लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स हैं जो भगवान ने दिए हैं। जैसे आपको मालूम होगा, जब हम सेवा के लिए प्रशांति में आते थे उसके बाद भगवान प्रसाद रूपी हमें अपने चरण स्पर्श दिया करते थे
जी।
ये वर्ष 1998 की बात है, 1 अगस्त 1998 की सुबह जब भगवान दर्शन के लिए और पाद नमस्कार देने के लिए कुलवंत हॉल में आए, तो भगवान सीधे जब मेरे पास पहुंचे तो मेरी एक आईज की प्रॉब्लम थी जो बचपन से, जब से मैं पैदा हुआ तब से वो मेरे साथ थी। और प्रॉब्लम वो ऐसी थी कि जैसे जैसे मैं बड़ा हूंगा मेरी जो नजर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। भगवान आए, भगवान ने आते उस बीमारी के बारे में पूछा मुझसे, तो मैं बहुत अचंभित हो गया, मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हुए। भगवान ने कहा यू विल बी ऑल राइट, और ये कहने के बाद भगवान बाबा ने चरण स्पर्श दिए और मुझे विभूति मटेरियलाइज करके दी। वो विभूति मेरी दोनों आंखों पर लगाई और खाने के लिए दी, तो भगवान की असीम कृपा से वो जो बीमारी मेरी बढ़नी थी वो वहीं खत्म हो गई। और उसके बाद आज अभिषेक भैया मैं आपके सामने बैठा हूं, मुझे आंखों की किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक वाक्य था जो मेरी लाइफ का टर्निंग प्वाइंट रहा है। और दूसरा, भगवान बाबा ने जो मुझे कृपा करी है, 2001 में 3 बार भगवान बाबा ने मुझे इंटरव्यू दिए हैं, 23 जुलाई 2001, 31 जुलाई 2001, 1 अगस्त 2001, तीनों भगवान ने मुझे साक्षात्कार का मौका दिया है। तो इनमें जो मैसेज जो भगवान बाबा हमारे थ्रू सोसाइटी को देना चाहते हैं वो ये है कि जब हमें पहला इंटरव्यू जब मिला था वो हिमाचल के कोऑर्डिनेटर्स को मिला था, उस समय मैं शिमला का यूथ कोऑर्डिनेटर था। तो भगवान के साथ जब हम अंदर वार्तालाप कर रहे थे, भगवान दिव्यवाणी से भगवान ने एक क्वेश्चन हम सबसे किया कि कोऑर्डिनेटर का क्या मतलब होता है, जो आप सब कोऑर्डिनेटर हैं उसका मतलब क्या होता है। तो हम ह्यूमन लेवल पर जो आंसर दे सकते थे हमने भगवान को दिए, बट भगवान ने जो दिव्यवाणी से उसका जो कंक्लूजन निकाल के हमारे को दिया वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। वो भगवान बाबा ने बताया कोऑर्डिनेटर का मतलब है प्रेम के साथ जो सबको साथ लेकर चलता है वो ही कोऑर्डिनेटर है, कि भगवान की ऑर्गेनाइजेशन में वही लीडर है जो सबको अपने साथ प्रेम के साथ लेकर चले, वही कोऑर्डिनेटर है। तो यही मैसेज मैंने अपनी लाइफ में उतारा ताकि जो आने वाले समय में भगवान जो हमें जो मौका दें वह इसी प्रेम के साथ हम आगे चलकर वो स्वामी की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं। इसके बाद जैसे सब लोग बोलते हैं भगवान मिरेकल करते हैं, मैंने अपनी लाइफ में दो बहुत बड़े मिरेकल देखे हैं। वो मिरेकल हैं, आपने दो स्कूल हैं हिमाचल में उनके बारे में सुना होगा। एक स्कूल है आनंद विलास शिमला में, ये वो जगह है जहां भगवान 15-16 अप्रैल 2010 को शरीर रूप में आए थे और भगवान ने हिमाचल की जो जनता थी उनको अपने दर्शनों से कृतार्थ किया था
जी।
इस स्कूल को बनाना अपने आप में एक मिरेकल है। हिमाचल जैसे आपको मालूम है लोगों, ना वहां कोई इंडस्ट्री है ना इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हर आदमी ने एक एक रुपया अपनी नेक कमाई से वहां पर दिया और उससे ही ये स्कूल बनकर तैयार हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल है जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है। और दूसरा जो मिरेकल है वो है श्री सत्य साई एजुकेयर विद्या प्रतिष्ठान जो धर्मशाला में स्कूल है। जो आनंद विलास का जो स्कूल है वो स्वामी का जो विद्या की जो पद्धति है, पुटपर्ती में जो पद्धति है उसी पद्धति पर वहां पर चल रहा है। वो रेजिडेंशियल स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल है, उसी तरह हर नित्य जो कर्म जो पुटपर्ती में बच्चों को सिखाए जाते हैं वो सब वहां फॉलो होते हैं। और दूसरा जो मिरेकल जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा वो श्री सत्य साई एजुकेयर विद्या प्रतिष्ठान जो धर्मशाला का स्कूल है वो अपने आप में ही एक भगवान का चमत्कार है जो हमने अपनी आंखों से देखा है। 2007 में जब हम पट्टी यात्रा के लिए पुट्टपर्ती आए थे तो जो यूथ हमारे साथ उस समय आए थे यहां भगवान का प्रेम पाकर जब अपने अपने स्थान पर वापस गए तो भगवान के प्रेम से इतनी प्रेरणा उनको मिली, उन्हें ये लगा कि हम लोगों को भगवान का कार्य कैसे कर सकते हैं, हम कैसे करें उस कार्य को। तो इसी प्रेरणा को लेकर जब वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के और चंबा डिस्ट्रिक्ट के दूर दराज क्षेत्र जो दुर्गम क्षेत्र है वहां पर आई कैंप लगाते थे, उस समय जब वहां पर गए तो उन्होंने देखा उस एरिया में किसी तरह का कोई स्कूल नहीं है, जो बच्चे हैं वो अगर पढ़ते हैं तो बहुत दूर जाकर पढ़ते हैं और पांचवी कक्षा तक ही पढ़ाई कर सकते हैं, उसके बाद वो पढ़ भी नहीं सकते थे। उस जो एरिया में रहने वाले लोग थे वो मजदूर तबके के लोग थे, वहां पर स्लेट की खाने हैं, कुछ समय वो खानों में मजदूरी का काम करते थे पर सरकार की कुछ नीति ऐसी बनी कि वो खाने सब बंद हो गई तो ये सब अनएम्प्लॉयड हो गए और इनके बच्चे क्योंकि ये मजदूर तबके के हैं इनके बच्चों को आगे पढ़ाना अपने बच्चों को मुश्किल हो रहा था। उस समय जो साई यूथ जो प्रेरणा भगवान से लेकर गया था उन्होंने भगवान के इस कार्य को आगे बढ़ाया कि इन बच्चों को हम यहां अब पढ़ाना शुरू करेंगे, तो इस तरह इस स्कूल की वहां पे स्थापना हुई और अब ये स्कूल पहली कक्षा से लेकर दसवीं कक्षा तक चल रहा है। जब ये शुरू हुआ था छठी कक्षा से इन्होंने शुरू किया था सब यूथ ने मिलकर। इसकी जो खासियत ये है कि इसमें जितनी भी एजुकेशन है हर बच्चे को फ्री दी जाती है और उनके नित्य क्रम की जो भी चीजें हैं टूथपेस्ट से लेकर उनकी किताबें उनका ड्रेस वो भी पूरे साल की उनको फ्री दी जाती है। और इसके बाद जब ये बच्चे यहां से पढ़कर निकलते हैं इसमें अभी 176 बच्चे पढ़ रहे हैं और इन बच्चों को इन चीजों के साथ साथ नित्य जो ब्रेकफास्ट है लंच है डिनर है ये भी विद्यालय की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाता है। और इसके बाद जो बच्चे यहां से पढ़कर निकलते हैं 112 बच्चे यहां से पढ़कर निकल चुके हैं जिनमें से 55 बच्चे ऐसे हैं जिनके मां बाप अभी भी उनको आगे पढ़ा नहीं सकते हैं, तो उन बच्चों को भी जो संस्थान है जो प्रतिष्ठान संस्थान है ये अभी भी उन बच्चों को आगे पढ़ने में उनकी हेल्प कर रहा है। 11th 12th भी विद्यालय ने उनको करवाया है बाहर और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर रहे हैं। एक बिटिया है वो GNM जो नर्सिंग का कोर्स रहता है वो भी विद्यालय ही उसको करवा रहा है,
फाइनेंस कर रहा है।
हाँ जी हाँ जी फाइनेंस भी कर रहा है साथ में जो उसकी डेली की चीजें वो भी उसको प्रोवाइड करवा रहा है।
अच्छा
हाँ जी हाँ जी हाँ जी और एक बिटिया है वो म्यूजिक में अंडर ग्रेजुएशन कर रही है उसको भी विद्यालय पूरी उसकी सहायता कर रहा है। और एक बेटा है वो NDA की जो प्रोफेशनल तैयारी होती है वो चंडीगढ़ से कर रहा है तो उसमें भी उसकी जो प्रिपरेशन की जो खर्चा है वही विद्यालय ही उठा रहा है। और एक बच्चा है वो स्वामी का जो वृंदावन का इंस्टीट्यूट है वहां पर पढ़ रहा है उसको वहां पढ़ाई का और उसके आने जाने का साल में दो बार उसको घर आना होता है तो जितनी बार वो घर आएगा उसका आने जाने का खर्चा भी विद्यालय ही उठा रहा है। अभिषेक भैया ये वो कुछ चमत्कार हैं जो मैंने साक्षात अपनी आंखों से देखे हैं। हम यही बोलते हैं कि विभूति निकलना एक चमत्कार है वो भी चमत्कार है पर भगवान बोलते हैं सबसे बड़ा चमत्कार वो है जब आप दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। ये एक चमत्कार है जो जब ये बच्चे इस विद्यालय से पढ़कर निकलकर सोसाइटी में आएंगे तो भगवान का नाम जो भगवान चाहते हैं कि हर घर घर तक भगवान का मैसेज पहुंचे। भगवान का मैसेज है लव ऑल सर्व ऑल हेल्प एवर हर्ट नेवर, वो मैसेज भगवान का हर घर तक जरूर पहुंचेगा यही साई यूथ का हमारा एक मोटिव है। भैया इसके साथ मुझे अभी जो जिम्मेदारी दी गई है वो स्टेट स्पिरिचुअल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है।
अच्छा।
इसमें मुझे तीन विंग है, पहला है वैदिक उच्चारण करना और सिखाना, दूसरा है भजन करना और भजन कैसे करना है वो सिखाना, और तीसरा स्टडी सर्कल जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इन तीनों में कि भगवान की मैसेज है उसके बारे में हम चर्चा करें ताकि लोगों को उसके बारे में पता चल सके कि भगवान का मैसेज क्या है। तो सबसे पहले जो वैदिक उच्चारण है मैं उस पर आऊंगा। जैसे पुट्टपर्ती में जब भगवान दर्शन के लिए आया करते थे तो जब स्वामी दर्शन देते थे उस समय वैदिक उच्चारण हुआ करता था, तो हम यहां बैठकर ये सोचते थे कि हमारे को सीखने का मौका कम मिलेगा। तो 2005 में भगवान ने कृपा करी कि भगवान के इंस्टीट्यूट के टीचर हैं डॉक्टर शास्त्री, वो शिमला आए। तो शिमला आने पर उन्होंने हमें जो वैदिक उच्चारण की जो बेसिक ट्रेनिंग है वो उन्होंने हमें दी। तो वो सीखने के बाद हमने प्रैक्टिस किया। अब दिल में ये इच्छा थी भगवान का जो ये मैसेज है, वेदों का उदाहरण का जो मैसेज है, वो घर घर तक, हर एक डिवोटी तक और पूरे हिमाचल के एक एक गांव तक, घर तक कैसे पहुंचाया जाए। तो पहले तो हम हर गांव गांव तक जाकर उसकी ट्रेनिंग दिया करते थे, परंतु आपको मालूम है कि जब तक ये डेली प्रैक्टिस नहीं की जाएगी तब तक सीखना मुश्किल है। तो भगवान की कृपा से हमें एक टेक्निक मिली जिसको हम कॉल जब हम करते हैं उसमें कॉन्फ्रेंस कॉल की एक फैसिलिटी रहती है
जी।
तो वो हमने अडॉप्ट की, उसमें एक सिखाने वाला और पांच सीखने वाले। तो डेली 2010 से ये हमने कार्यक्रम शुरू किया जिसको हम, मैं अब एक पायलट प्रोजेक्ट हिमाचल के लिए बोल सकता हूं
जी।
तो जब ये हमने शुरू किया 2010 में, तो एक मेरे पास पांच स्टूडेंट थे और मैं सिखाने वाला था। अभी मेरे पास 81 स्टूडेंट हैं जो मेरे से सीख चुके हैं, और सिर्फ सीखा ही नहीं है, वो आगे हर एक पांच बच्चे को सिखा भी रहे हैं। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि भगवान का जो वेदों का उदाहरण का जो मैसेज है वो कितनी अच्छे तरीके से हिमाचल के घर घर और गांव गांव में चल रहा है। दूसरा है भजन का, भजन सिखाना। जैसे भगवान के लिए, जैसे हम बोलते हैं कि भगवान की ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला द्वार है वो भजन ही है, एंट्रेंस का अगर कोई द्वार है वो भजन है। तो वो जो, क्योंकि भगवान का जो भजन है वो एक सेक्युलर भजन है, उसमें पूरे वर्ल्ड में एक यूनिफॉर्मिटी है कहीं भी आप जाएं। तो हमारा यही विजन था कि जब भी हिमाचल में किसी भी घर में किसी भी गांव में भजन हो तो ऐसा ना लगे कि हिमाचल में हो रहा है, ऐसा लगे कि प्रशांति निलय में वो भजन हो रहा है। तो पहले हम हर घर घर गांव गांव जाकर हमने भजन ट्रेनिंग सेशन शुरू किया, पर क्योंकि इसमें भी आप, हिमाचल एक दुर्गम क्षेत्र है
जी।
कभी 6 महीने कोई बर्फ से कटा रहता है तो वहां जाना मुश्किल हो रहा था। तो हमने यही टेक्निक जो वेदा सिखाने की टेक्निक है, इसी टेक्निक से हमने भजन ट्रेनिंग भी बीच बीच में करना शुरू किया। एक छोटा सा आपको मैं एक इंस्टांस सुनाता हूं इससे, जो मैंने अभी स्कूल का जो आपसे जिक्र किया, साई एजुकेयर विद्या प्रतिष्ठान, तो मुझे वहां भी बच्चों को सिखाने का मौका मिलता रहा भगवान की असीम कृपा से। तो कभी ऑडियो द्वारा कभी वीडियो कॉल द्वारा मैं उनको बच्चों को भजन सिखाता था। तो इसका रिजल्ट मुझे अब दिखाई दिया। कुछ समय पहले जब मैं वहां भजन ट्रेनिंग के लिए गया तो मैंने देखा बच्चे एक कमरे में बैठे हैं और कुछ वहां एक्टिविटी चल रही है।
अच्छा।
तो जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि वो जैसे मैं उनको सिखाता था वैसे जो बच्चे मेरे से सीखते थे वही बच्चे वीडियो कॉल से उनको भजन, जहां वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वहां से उन बच्चों को वो भजन सिखा रहे हैं।
अरे वाह।
तो भगवान का जो मैसेज है वो किस तरह घर घर और कैसे बच्चों के बीच में,
कैसे बच्चे गुरुओं से सीखते हैं
और आगे सिखा रहे हैं, ये भगवान की असीम कृपा है हम सबके ऊपर।
भगवान का काम नहीं रुकना चाहिए। इस लगन से आपने एक टेक्निक विकसित की और वो बच्चों ने आगे चल के, आई बिलीव आप उस बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं जो अब पढ़ के निकल चुके।
जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी, जो वहां स्कूल के एलुमनाई बच्चे हैं। और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त है कि मेरा जो एक बेटा है वो भगवान के इंस्टीट्यूट में 2009 से पढ़ रहा है। इस साल वो 10वीं कक्षा में है और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि वो उसे अपने इंस्टीट्यूट में आगे भी यहीं पढ़ाएं। तो भैया ये मेरे कुछ लाइफ के एक्सपीरियंस रहे हैं भगवान के साथ, और मैं हर डिवोटी जो इस प्रोग्राम को सुन रहा है मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है कि जितना भी जो भी समय आप भगवान के कार्य में लगा सकते हैं आप जरूर लगाएं, क्योंकि ये छोटी सी जिंदगी है। भगवान हमें इस छोटी सी जिंदगी में जो मैसेज देकर गए हैं वो भगवान के जो मैसेज है वो हर घर तक पहुंचे। साई राम।
बहुत सुंदर भैया, रेडियो साई की टीम और हमारे सभी श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने इतने सुमधुर अनुभव हम लोगों के साथ साझा किए, थैंक यू भैया।
थैंक यू भैया। साईराम।
साईराम भैया।
अभी आप सुन रहे थे साई का प्यार जीवन आधार। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने हिमाचल प्रदेश राज्य संगठन के स्पिरिचुअल कोऑर्डिनेटर श्रीमान विकास गुप्ता जी के अनुभव सुने। यह वार्ता हमारे रेडियो साई के स्टूडियो में 9 जनवरी सन 2019 को रिकॉर्ड की गई थी।
आप सुन रहे हैं रेडियो साई प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साई प्रेम वाणी। प्रिय श्रोताओं, गान सरिता के इस भाग में आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वामी ने श्री सत्य साई बाल विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1969 में की थी। अब इस कार्यक्रम को 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मानवता को श्री सत्य साई युग में बाल विकास कार्यक्रम एक अनुपम उपहार है, जिसके माध्यम से बच्चों को सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा के नैतिक मूल्यों पर आचरण करना सिखाया जाता है और बच्चों के सामने जीवन का लक्ष्य खुल जाता है और खुली हुई आंखों से वे सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच तालमेल बनाते हुए अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करते हैं। बच्चों के द्वारा देखने वाले ऐसे ही सपनों को संजोया गया है एक मूल्य गीत में, जिसके बोल हैं, खुली हुई आंखों से सपने देख रहे उल्लास के, हम बच्चे बाल विकास के। आइए इस मधुर मूल्य गीत का आनंद लेते हैं।
साथ हैं तो निश्चित रूप से
जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी। इस गीत को श्री सत्य साईं बुक्स एवं पब्लिकेशन ट्रस्ट मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश।
मधुर मधुर साई दिव्य संदेश।
आज इसके अंतर्गत भगवान द्वारा 9 दिसंबर सन 1979 को दिए गए अमृत भाषण से एक भाग लिया गया है।
साई संदेश दिव्य संदेश साई संदेश दिव्य संदेश।
सकल विद्यमेति सब जयिंचनवच्चो पूर्वै रणमन्तु पूर्वच्चो राजराजै पुट्टि राज्यमेलगवच्चो केमं गोदानं चेयवच्चो गगनम्बु मनुगल చుక్కల లెక్కింపవచ్చు జీవరాశుల పేర్లు చెప్పవచ్చు అష్టాంగ యోగముల అన్నింటినీ నేర్చవచ్చు చంద్రలోకము కూడా చేరవచ్చు కానీ దేహేంద్రియములరి కట్టి మనసు నిలిపి అంతర్ముఖము చేసి అనవరతము నిశ్చల సమాన నిష్ఠుడై నిలువలేడు నిశ్చల సమాన నిష్ఠుడై నిలువలేడు।
వ్యక్తి హర్ తరహ్ కి శిక్షా ప్రాప్త కర్కే వాద్ వివాద్ మే జీత్ సక్తా హై, बड़े बड़े युद्ध जीत सकता है, सम्राट की तरह जन्म लेकर प्रजा पर राज कर सकता है, उदारता पूर्वक दान धर्म और गोदान कर सकता है, आकाश की सैर करता हुआ तारों की गणना कर सकता है, विश्व के सभी नामधारी जीवों का वर्णन कर सकता है, अष्टांग योग और अन्य सिद्धियों के ज्ञान का अध्ययन कर सकता है, यहां तक कि चांद पर भी जा सकता है, किंतु कोई भी व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर सकता, मन को स्थिर नहीं रख सकता और अपने अंतस में झांक कर समान समभाव की अवस्था तक नहीं पहुंच सकता।
ఆటోమేటికు లైటుకు అవధులుండ జగతి సృష్టింపనొక్కడు ఉండవలదే, ఈ జగతి సృష్టింపనొక్కడు ఉండవలదే, ఈ జగతి సృష్టింప ఒక్కడుండవలదే।
कहीं धुआं उठता दिखाई देता है तो उसके मूल में आग और गर्म राख अवश्य होती है, बस चलाने के लिए चालक की आवश्यकता होती है और बिजली के बल्बों को जलाने के लिए बिजली का होना आवश्यक है, तो इस विश्व की रचना करने वाला कोई सृष्टिकर्ता भी अवश्य होगा। प्रेम स्वरूपो, बिना सृष्टिकर्ता के इस विश्व में किसी भी वस्तु या प्राणी का अस्तित्व असंभव है।
वाक्य निर्माण व्यक्ति ये जपानो ये जर्मनी अंदो ये स्विट्जरलैंड ये अमेरिका अंदो उन्हें।
यह एक घड़ी है, इस घड़ी को बनाने वाला व्यक्ति जापान, अमेरिका, स्विट्जरलैंड या किसी अन्य देश में अवश्य मौजूद होगा।
आ व्यक्ति
वह व्यक्ति कैसा होगा? वह व्यक्ति ऐसा होगा जिसे घड़ी के बारे में सब कुछ अच्छी तरह पता होगा, क्योंकि घड़ी के बारे में पूरा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ही घड़ी का निर्माण कर सकता है।
अदे विधंगा लोक आराधकुलैन लोक पालकुलैन सूर्युडु चंद्रुडु अनंत नक्षत्रमुलु कालकुलु इवन्नी कूडा केवलम सृष्टिंचुटलो एदो ओक नायकत्वमु ఒక కర్తత్వము ఒక పవిత్రమైనటువంటి నిర్మాణత్వము తెలిసినటువంటి వాడు ఒక ఉండవలే।
ठीक इसी प्रकार अखिल विश्व को जीवन देने वाले सूर्य, चंद्रमा, अनगिनत तारों तथा हमारे चारों ओर दिखाई देने वाली हर वस्तु का निर्माण भी वही कर सकता है जिसमें यह सब करने की शक्ति और सामर्थ्य है।
सर्वगुणे सर्वव्यापकुडे सर्वमहिमान्वितुडे उन्नप्पुडे ई विधमैनटुवंटि सूर्य चंद्रमा नक्षत्रमुलनु
सूर्य चंद्रमा और विभिन्न वस्तुओं को बनाने का सामर्थ्य और शक्ति केवल ऐसे रचनाकार में ही हो सकती है जो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हो।
अनेक विधमैनटुवंटि
अलग अलग विद्वानों ने इस रचनाकार का वर्णन अलग अलग नामों और अलग अलग रूपों में किया है। ऐसे सर्वव्यापक तत्व को जानने और समझने का प्रयत्न करना मनुष्य का कर्तव्य है।
दिव्यत्वमैन मानवत्व धरिंची पवित्रमैन आत्मनु मनो स्वीकरिंची तद्वारा దైవత్వమైనటువంటి యొక్క దారిని మనం కొంతవరకు ప్రయత్నపూర్వకంగా సాధించినప్పుడే ఇక్కడ మానవత్వంలో ఉన్నటువంటి దివ్యత్వం కూడాను ప్రకటించినటువంటి వారం అవుతాం।
जब हम मानते हैं कि यह मानव शरीर भगवान का मंदिर है और इसमें आत्मा का निवास है जिससे ईश्वर को खोजने की कोशिश की जा सकती है, तो इसी आधार पर आप ईश्वर की खोज कर सकते हैं।
నిజముగా మానవత్వంలో ఉన్నటువంటి దివ్యత్వము ప్రకటించడానికి కాని అనుభవించడానికి కాని ఆచరించడానికి కాని అనేక విధమైనటువంటి సులభోపాయములు లేకపోలేదు।
परंतु यह बात सिद्ध करने या इसका अनुभव प्राप्त करने अथवा इसका आनंद प्राप्त करने के और भी कई मार्ग हैं।
నిజముగా మానవునికి అనేక విధమైనటువంటి అపేక్షలు ఒక ప్రధానమైనటువంటి అపేక్ష ఒకటి కలదు। ఆ అపేక్ష అకుంఠితమైనటువంటి యొక్క ఆనందము కావాలని ఆశ।
प्रत्येक मनुष्य में सभी इच्छाएं होती हैं जिनमें से एक इच्छा अति महत्वपूर्ण है। इसका वर्णन करते हुए कहा जा सकता है कि हर व्यक्ति परम आनंद और शांति की कामना करता है।
निर्विराम कृषि निरंतर तापत्रयములతో అంతులేని ఆశలతో అర్థంకాని ఆవేదనతో అప్రాప్త రూప ప్రాప్తికై ప్రాణాడినటువంటి మానవులకు అశాంతికి గురై కొంతవరకు నిస్పృహతో నిలిచిపోతున్నాడు।
मनुष्य अपनी अनंत इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अंतहीन प्रयास और कड़ी मेहनत के बावजूद जब सफल नहीं होता तो वह गहरे शोक में डूब जाता है। इसका कारण क्या है?
केवल मानव तान आशिंचिनटुवंटि आनंदमु देहेंद्रियमु लभिंचिनदि भ्रमिंचि ई देहेंद्रियमु वेंट परिगणितुन्नाडु।
यह सोचकर कि शारीरिक प्रयास द्वारा यह सुख शांति हासिल की जा सकती है, मनुष्य शारीरिक इंद्रियों की संतुष्टि के पीछे भागता रहता है।
कानी ताने आनंद स्वरूपुडनि सत्यानि गुर्तुंचुकोलेकपोतुन्नाडु।
वह यह समझ नहीं पाता कि वह स्वयं आनंद स्वरूप है।
कनुक मानवत्वम अनेटुवंटिदि केवल आनंद पिपासी अनेटुवंटि मानवुडियंदु पवित्रमैनटुवंटि दिव्य स्वरूपान्नि धरिंचि उन्नदि।
मनुष्य स्वयं दिव्य स्वरूप है, इसलिए शांति और आनंद उसमें स्वाभाविक रूप से उपस्थित रहते हैं।
अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। भगवान द्वारा 9 दिसंबर सन 1979 को दिए गए अमृत भाषण से आज इसके अंतर्गत एक भाग प्रस्तुत किया गया था।
भवसागर तारका दिव्य संदेश।
अब प्रस्तुत है आदर्श जीवन आनंद उपवन, जिसमें आज हम अंकल लायंस टेल्स के रूप में विख्यात हमारी एनिमेशन सीरीज से ली गई एक कहानी का हिंदी रूपांतरण सुनेंगे, जिसका शीर्षक है सच्चा धन।
सच्चा धन।
सर, दुनिया में कितने सारे धनवान हैं, फिर भी गरीबी फैली है और लोग भूख से मर रहे हैं, क्यों?
मिकी, भगवान ने इंसान को ऐसा ही बनाया है।
मगर गरीबों और लाचारों की मदद करना क्या धनवानों का कर्तव्य नहीं है?
हाँ है तो, मगर तुम्हारे लिए ये समझना भी जरूरी है कि कौन धनी है और कौन निर्धन। चलो आशेरु मामा से इसी बारे में कहानी सुनेंगे।
एक दिन एक धनी आदमी अपने बेटे को लेकर छुट्टी मनाने गांव चला गया। वह बेटे को दिखाना चाहता था कि गरीब लोग कैसे जीवन बिताते हैं। उन्होंने 2 दिन और रातें एक गरीब किसान के खेत पर उसके परिवार के साथ बिताई। दो दिन की छुट्टी से लौटकर पिता ने पूछा,
क्यों बेटा, छुट्टी कैसी भी थी?
बड़ा मजा आया पापा।
तुमने देखा ना गरीब लोग कैसे जीते हैं?
हाँ बिल्कुल।
तो बेटा बताओ, तुमने क्या देखा और क्या सीखा?
पापा, मैंने देखा हमारे यहाँ जो तालाब है वो तो बगीचे के बीच में ही खत्म हो जाता है, पर वहाँ तो नदियाँ हैं जो खत्म ही नहीं होती। अपने पिंजरे में सिर्फ एक तोता है और वहाँ तो जंगल में अनगिनत पंछी हैं। पापा, हमारा बगीचा बनावटी बत्तियों से रोशन है, उनका आसमान तारों से जगमगाता है। हमारी छत सिर्फ बरामदे तक जाती है, उनके सिर पर आकाश की छत धरती के अंत तक है। अपना घर और जमीन तो कुछ ही एकड़ों में है, पर उनके खेतों का ना ओर ना छोर। पापा, हमें खाने की चीजें खरीदनी पड़ती हैं, जबकि वे खुद ही सब उगा लेते हैं। और हाँ, हमने सुरक्षा के लिए चारों ओर दीवार खड़ी कर रखी है, मगर वे अपने दोस्तों से घिरे रहकर ही सुरक्षित रहते हैं। आपने दिखा दिया असल में हम कितने गरीब हैं।
दुनिया में सबसे धनवान वो है जिसकी इच्छाएं सबसे कम हैं और जो हमेशा संतुष्ट रहता है, और जिसकी जितनी ज्यादा इच्छाएं वो उतना ही गरीब होता है।
अभी आप सुन रहे थे आदर्श जीवन आनंद उपवन, अंकल लायंस टेल्स के रूप में विख्यात हमारी एनिमेशन सीरीज से सच्चा धन नामक शीर्षक की एक कहानी का हिंदी रूपांतरण इसमें आज प्रस्तुत किया गया था। इसी के साथ हमारी आज की साई प्रेम वाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति का अब समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझाव एवं परामर्श से हमें ईमेल द्वारा या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर जरूर अवगत कराएं। हमारा पता है listener@radiosai.org, listener@radiosai.org एवं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393258258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ यूट्यूब पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहाँ देखने सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो साई हिंदी को सब्सक्राइब करें। आप हमसे अपने विचार वहाँ कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी देकर भी साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को मन मुताबिक सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर भी जा सकते हैं।
हमारा ये जीवन हर पल हर क्षण हर लम्हा भगवान के गुणगान और उनके दिव्य लीलामृत रसपान में बीत जाए, यही है हमारी प्रार्थना। और इसी मनोकामना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। जय साईं राम।